हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या 22, 23 एंड 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु अकारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपीश गोपीका कांता, श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैतं गदाधरं, शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। इस तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 19 में भगवान ने कहा, असत्यो हि आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। यदि इस प्रकार अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने सोचा कि कर्म करने से क्या कभी किसी ने सिद्धि परम यानी परब्रह्म को प्राप्त किया है, सिद्धि को प्राप्त किया है, परफेक्शन? तो या तो है ना, कर्म को त्यागने से ही, उसके मन में यही था कि संन्यास लेने से ही परफेक्शन मिलेगी, कर्म करते हुए कोई कर्मों के बंधन से कैसे छूट सकता है? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण प्रस्थापित करते हुए श्लोक नंबर 20 में कहते हैं, कर्मणाय वही संसिद्धि आस्तिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। देखो जनक जैसे राजाओं ने भी केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी, इसे सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए आपको भी कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन को पहले एक उदाहरण दिया, उसके बाद क्यों कर्म करना चाहिए उसके एक आदर्श प्रस्थापित करते हुए श्लोक नंबर 19 में भगवान ने कहा, यत्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। क्यों आपको क्यों कर्म करना चाहिए? क्योंकि जो जो आचरण महापुरुष करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श स्थापित करते हैं संपूर्ण विश्व उसी का ही अनुसरण करता है। तो भगवान ने एक उदाहरण दिया, उसके बाद आज फिर दूसरा उदाहरण देते हैं। भगवान स्वयं के विषय में कहते, इतना सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर, भगवान श्री कृष्ण याद करने जैसा श्लोक है, कंठस्थ कर लीजिए। भगवान कहते हैं 3.22, भगवान कहते हैं, मेरे साथ श्लोक का उच्चारण कीजिए। भगवान कह रहे हैं, न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पाठास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। शब्दों का अर्थ देखिए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम्, ना मना नहीं, मे मना मुझे, पार्थास्ति हे प्रथापुत्र, इस्ति मतलब है, कर्तव्यम मेरी नियत कर्म, मेरी कोई नियत कर्म नहीं है खाली इस संसार में, नहीं। भगवान आगे कहते हैं, त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु अर्थात तीनों, लोकेषु मतलब लोकों में, किंचन कोई भी, चाहे किसी भी लोक में चला जाऊं, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और आगे नानावाप्तम अवाप्तव्यम, नाना अर्थात ना मना नहीं, अनावाप्तम मतलब इच्छित, एक तो मेरा कर्तव्य भी नहीं है और दूसरा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, इच्छित भी नहीं है, अवाप्तव्य मतलब पाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है, एक तो मेरा कर्तव्य नहीं और कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करूं, यानी कि अनावाप्तम मतलब इच्छित, अवाप्तम यानी पाने की इच्छा, वर्त लगा रहता हूँ, फिर भी लगा रहता हूँ किसमें, एवच कर्मणि, निश्चय ही सदैव कर्म में लगा रहता हूँ। हालांकि भगवान कह रहे हैं कि ना मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है और ना ही मेरा कर्तव्य करे। देखो मनुष्य कार्य जो भी करता है ना, उसकी दो वजह होती है, दो कारण होते हैं, एक तो आपकी अपनी इच्छा होती है कोई चीज प्राप्त करने की या कोई चीज करने की, अपनी इच्छा होती है ना, आपकी अपनी इच्छा होती है इसलिए आप कर्तव्य करते हो, कोई कार्य करते हो, जैसे आप खाना खाते हो आपकी इच्छा है, आप खा रहे हो, आप सो रहे हो आपकी इच्छा है, आप डांस कर रहे हो आपकी इच्छा है, आप है ना कुछ भी कर रहे हो आपकी इच्छा है, इसलिए कार्य किया क्योंकि आपकी इच्छा है। और दूसरा कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कर्तव्य होता है, भले हमारी इच्छा नहीं होती है, फिर भी जैसे आप पत्नी बोलती है जाओ नीचे से मार्केट से सब्जी लेकर आओ, या फिर कोई भी कार्य जैसे हम हमें पति बोलते हैं, या फिर बच्चों के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं या बच्चों के हमारे प्रति कर्तव्य, या तो आप कर्तव्य पालन करते हो या तो अपनी इच्छा करते हो, ये दो कार्य करते हो, ऐसा है ना। लेकिन भगवान कहते हैं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं कार्य कर रहा हूं। और फिर दूसरा, फिर भी नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, मेरे मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, ना मेरी मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही मेरी कोई इच्छा है। वर्त एवच कर्मणि, फिर भी मैं सदैव कार्य में लगा रहता हूँ। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अभी हम इसके साथ ही श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे, साथ में सबकी व्याख्या करेंगे। 23 को मेरे साथ रिसाइट कीजिए। भगवान कह रहे हैं, यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम् न वर्तन्ते जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि अहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्ते वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि अहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। शब्दों का अर्थ देखिए, यदि ही अहम्, यदि मना यदि ही मना निश्चय ही अहम् मना मैं, भगवान कहते यदि मैं न वर्तेयम् नहीं इस प्रकार व्यस्त रहूंगा, अगर मैं इस प्रकार कार्य नहीं करूंगा तो जातु, जातु का मतलब होता है कभी कर्मणि यानी नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रिता, सावधानी से। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं इस तरह से नियत कर्मों को सावधानी के साथ नहीं करूंगा तो क्या होगा, मम वर्तमान वर्तन्ते, मम मन मेरा वर्तमान मतलब पथ, यानी कि जो मैं नहीं करूंगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे, मेरे को अनुसरण करेंगे, अनुवर्तते यानी अनुसरण करेंगे। और आगे भगवान कहते मनुष्याः, सारे जितने भी लोग हैं वही मेरी कथ का अनुसरण करेंगे। पार्थ, हे पार्थ सर्वशः, सर्वशः मतलब सभी प्रकार से, अगर मैं अपने नियत कर्मों को पूरा नहीं करूंगा तो सारे लोग मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे। अनुवाद देखिए, भगवान कहते हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। इन दो श्लोकों में समझने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम अभी कर्म योग पढ़ रहे हैं तो भगवान अभी अर्जुन को कर्म योग के विषय में बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को ये नहीं बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ मेरी शरण में आना, ये सब भगवान अभी उस जगह पर नहीं आए। यही भगवान कब स्टार्ट करेंगे? पहली बार वास्तविक, अभी तो भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान जब अपने बारे में स्पष्ट रूप से बताने शुरू करेंगे ना, वो पहली बार चौथे अध्याय में, पहली बार जब भगवान कहेंगे कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने उसके बाद अपने पुत्र को दिया, फिर मनु ने अक्षवा को, इस तरह से आना भगवान पहली बार स्पष्ट रूप से बताएंगे। फिर अर्जुन को बोलेंगे, अर्जुन मुझे ये सब याद है पर तुम्हें याद नहीं है, तो अर्जुन परेशान हो जाएगा, अच्छा आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है और आप तो अभी हो, तो आपने कैसे दिया? तो अर्जुन भगवान को बोल रहे, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आपके और मेरे बहुत बारी जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है पर तुम्हें याद नहीं है, लेकिन वो आगे आएगा। अभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जो है वो कर्मयोग के विषय में बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन भूल गया है, भगवान नहीं भूले कि वो वास्तव में कौन है। भले यहाँ पर भगवान एक राज ऋषि के विषय में, राज ऋषि के स्तर पर अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है कि वो हर टाइम बताते नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैंने सब कुछ उत्पन्न किया है, हर टाइम बताते नहीं है, वो धीरे 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 जो मनुष्य जिस स्तर पे होता है उसको आगे भक्ति तक लेकर आते हैं। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि अचानक से भगवान ने अपने विषय में बोलना शुरू किया, और यहाँ पर चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि वास्तव में भगवान जो है वो भगवद्गीता में सारे स्तर बता रहे हैं, ठीक है, कर्म योग बताएंगे, ज्ञान योग बताएंगे, भक्ति योग सब कुछ बताएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा है कि वो केवल भक्ति देवी के विषय में बात करें, केवल राधा रानी की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं, केवल भक्ति की महिमा को बताने के लिए भगवान उत्सुक रहते हैं। भगवान की हृदय की उत्कंठा है, ये जो भक्ति है वो कृष्ण आकर्षणमयी, कृष्ण को आकर्षित करती है। तो भगवान जो है वो भले कुछ और बताना चाहते हैं, लेकिन बार बार जैसे कर्मयोग में भी भक्ति को मिश्रित कर देते, जैसे अभी हम लोगों ने 2.61 में पढ़ा था, याद है भगवान ने कहा था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, तो मत्पर शब्द से भगवान ने थोड़ा स्पष्टीकरण ऐसे स्वाद चखाया था एक, कि मेरी आपको क्या करना है, अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करना है और इंद्रियों को संयम करके जो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि है। तो अर्जुन को उस समय भी भगवान ने थोड़ा सा जैसे संकेत मात्रा से बताया, और आज भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हालांकि भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम, अभी पार्थास्ति बहुत ही घनिष्ठ यहाँ पर संबंध अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो तुम पार्थ हो ना, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, लेकिन फिर भी हम दोनों में अंतर है, तुम बड़ी समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ, परंतु मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर बहुत डिफरेंट है, क्योंकि तुम्हारे बहुत से कर्तव्य हैं, लेकिन न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचन, मैं अलग हूँ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है तीनों लोकों में। और यहाँ पर भगवान समझो पहली बार अपना स्तर सूचित कर रहे हैं, थोड़ा 61 में बताया, अभी यहाँ पर अपना स्तर बता रहे हैं कि बलि में तुम्हारा संबंधी हूँ पर मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कि भले दिखने में मैं आपको एक राजऋषि दिख रहा हूँ, परंतु मैं कोई क्षत्रिय राजकुमार नहीं हूँ यदुवंशियों का, मैं परम सत्य हूँ, इसलिए परम सत्य हूँ तो मेरी कोई इच्छा नहीं है कार्य करने की और ना ही मेरा कोई कर्तव्य है, तीनों लोकों में भी नहीं है। फिर भी भगवान आगे कहते हैं, नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी हालांकि मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई अभाव नहीं है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता। तो यहाँ पर यह एक बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान आखिर कार्य करते क्यों हैं? इसका उत्तर केवल वैदिक संस्कृति में ही मिलता है। बाकी जो अदर रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन्स हैं और या फिर दूसरे रिलीजन्स हैं, देयर आइडिया ऑफ गॉड इज फ्रोजन परफेक्शन, यानी बिल्कुल फ्रोजन, जिस तरह से बर्फ के समान निष्क्रिय, कि उसके अंदर कोई वो कार्य नहीं करते। कैसे कार्य नहीं करते, जैसे उसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि जैसे एक पेंटर होता है, वो पेंटर एक बहुत अच्छा चित्र अभी बना रहा है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है तो सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन एक अवस्था में वो चित्र एकदम कंप्लीट, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक डॉट की भी जगह नहीं है, एकदम कंप्लीट है, पूर्ण परिपूर्ण अवस्था में जब वो आ जाएगा तो फिर वो बहुत ही सुंदर लगेगा। उसके बाद उसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है उसमें ऐड करने की, लेकिन यदि फिर भी उसके अंदर कोई लाइन निकालेगा या फिर कुछ और ऐड करेगा, कलर लगाएगा, तो फिर वह चित्र अभी उतना सुंदर नहीं लगेगा। इस तरह से एग्जांपल देते हैं कि भगवान परिपूर्ण है, तो अगर वो कुछ भी करेंगे एक्स्ट्रा और कुछ करते हैं, भगवान के अंदर कुछ ऐड किया जाता है कि भगवान ने ये किया, तो भगवान इतने परिपूर्ण नहीं रहेंगे। इसलिए वह कहते हैं भगवान निष्क्रिय है, लेकिन ये जो निष्क्रियता है उसमें कोई आकर्षण नहीं है। अगर भगवान कुछ करते नहीं है तो उनको प्राप्त करके हमें क्या लाभ। तो वैदिक ग्रंथ बताते कि नहीं, भगवान जरूर कार्य करते हैं परंतु अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पूर्णता को फैलाने के लिए करते हैं। वो पूर्ण है परंतु अपने, जैसे अब इसको कैसे समझाते हैं कि जैसे एक नौजवान, जब लड़का या लड़की नौजवान हो जाते हैं तो उनको थोड़ा अपूर्णता लगती है कि मैं किसी संबंध जोड़ूंगा, कोई मेरा बन जाएगा और मैं किसी का बन जाऊंगा तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। वो कैसे करते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा फीस्ट हो और उसमें 50 गुलाब जामुन, आपके आपके प्लेट में 50 गुलाब जामुन है, आप 50 गुलाब जामुन नहीं खा सकते, आपने जितने आप खा सकते हो उतने खाओ, बाकी जो है वो सब क्या करो, बांटो। तो जब आप बांटते हो तब ये नहीं है कि आपको उसकी बदले में कुछ चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास इतना है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो भगवान जब कार्य करते हैं तो केवल आनंद के लिए, ये भगवान की लीला है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं भगवान आनंद प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, परंतु भगवान आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं, आनंद को एक्सप्रेस करने के लिए कार्य। जैसे रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान का कार्य, भगवान जो कार्य करते हैं वो एक खेल की तरह है। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर खेलता है तो खेलना उसका कर्तव्य नहीं है, वो खेलना उसका कर्तव्य थोड़े है, वो तो बस आनंद प्राप्त करने के लिए खेल रहा है, ना ही किसी ने उसको आदेश दिया कि भाई आपको खेलना है। वो खेल रहा है, अगर कोई बच्चा तो अपनी इच्छा से खेल रहा है। वो खेल रहा क्यों है, गेम खेल रहा है क्यों, क्योंकि वो आनंदित नहीं है और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो खेल रहा है। लेकिन इसी मत को, रामानुजाचार्य के इसी मत को आगे बढ़ाते हुए बलदेव विद्याभूषण और आगे कहते हैं कि खेल से तो वो आनंद प्राप्त करता है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भगवान ने क्या लिखा, नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ आवश्यकता भी नहीं है और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, तो ये उदाहरण इस पर जमता नहीं है। तो ना बलदेव विद्याभूषण इस चीज को ऐसे बताते, भगवान का कार्य कैसा है, आनंदित व्यक्ति के नृत्य के बराबर है। जब एक आनंदित व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा उसको आनंद आ जाता है, बहुत ज्यादा आनंद आ जाता है, तो क्या करता है, नृत्य करता है। अब नृत्य करके वो आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है, बल्कि नृत्य करके अपने आनंद को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी अपने आनंद का प्रकटीकरण, अपने आनंद को इस संसार में प्रदर्शित कर रहा है। ये भगवान का कार्य, भगवान जो कार्य करते हैं वो केवल और केवल आनंद को बखान करने के लिए, कि देखो कितना आनंद है। इसलिए भगवान इस संसार में आकर बताते हैं कि तुम ये समझते हो कि इस संसार में सुख है, लेकिन वो उसी गौलोक वृंदावन धाम का एक छोटा सा चित्र, इस छोटा सा प्रतिबिंब दिखाते हैं कि आनंद यहाँ नहीं, आनंद तो मेरे गोलोक वृंदावन धाम। तो रविंद्र स्वरूप जो कि शुरू में बचपन में क्रिश्चियन मत में जाते थे, वो क्रिश्चियन चर्च में गए, एक बारी चर्च में गए और रविंद्र स्वरूप ने चर्च के जो पादरी होता है उससे पूछा कि भगवान गोलोक वृंदावन धाम में क्या करते हैं। तो वो पादरी जो था वो एकदम परेशान हो गया, मतलब सोचा नहीं उसने कभी कि कोई ऐसा प्रश्न आएगा कि भगवान उधर करते क्या है, क्योंकि उसकी किताब में लिखा ही नहीं कि भगवान उधर क्या करते हैं। उनके जो क्रिश्चियनों के जो बुक्स होती है ना, जिसमें पैराडाइज वो गोलोक का जो मतलब परम धाम का जो चित्र है, उसमें क्या है, सुखी संसार, सुखी परिवार और सुखी पशु, सुखी सुखी वातावरण, इस तरह का कुछ है जिससे पैराडाइज हमारे में स्वर्ग का होता है। तो उसने पूछा, चलो ठीक है भगवान वहां पर क्या करते, नहीं बताओ ये बताओ हम उधर जाके क्या करेंगे। तो उसने कहा, जिस पादरी है वो बता रहा था कि देखो बेटा अभी छोटा था, तो बोला आप हम वहां पर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर सारे हमारे परिवार के जन हैं, जैसे हमारे दादा होंगे, हमारे पिताजी होंगे, हमारी माताजी होंगी और हमारे नाना जी भी होंगे और आप भी होंगे, तो सब मिलकर बहुत ही संतुष्ट जीवन गुजारेंगे, बहुत ही संतुष्टा होगी वहां पर, बहुत आनंद होगा, हमारे सब लोग होंगे। तो बोला अभी वो छोटे थे तो घर में सारे लोग ही रहते थे, तो बोला वो जगह पे जाने के लिए मैं इतनी स्ट्रगल क्यों करूं, ये सब तो मेरे अपने घर में भी है, मतलब ये तो कोई परम धाम लगता ही नहीं, मेरे घर जैसा लगता है, उसके लिए मुझे आप बोलते हो ये करना, ये करना, ये करना, तपस्या करनी, ऐसी जगह प्राप्त करने के लिए मैं कोई स्ट्रगल क्यों करूं। मतलब उनकी शास्त्र में परम धाम का कोई वर्णन किया ही नहीं गया है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान परम धाम में क्या करते हैं, कौन, मतलब वो जो नित्य लीला चल रही है वो कुछ पता ही नहीं है दूसरे ग्रंथों में। जीसस ने स्वयं कहा, देयर इज मच हायर टू टेल यू, बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, बट आप अभी समर्थ्य नहीं हो, आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके विषय में जान सको। इसी तरह इस्लाम में भी ये पता ही नहीं है कि भगवान क्या है या फिर उसका नाम क्या है, वो दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक क्योंकि अपने धर्म को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए क्या कहते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है नहीं कि भगवान के विषय में आप कुछ धारणा बना सको, वो भगवान निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता है, अगर आप कुछ बनाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मन का फतूर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान के विषय में कुछ भी हम जान ही नहीं सकते हैं, सिर्फ उसकी इबादत कर सकते हैं और कुछ भी उसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का कार्य कैसा। लेकिन हमारे शास्त्र एकदम परफेक्ट बताते हैं कि भगवान स्वयं खड़े होकर कह रहे हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु किंचना नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। भली मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो अगले श्लोक में भगवान बता, यदि हियम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अगर मैं अपने कर्तव्य नहीं करूंगा, ये फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अच्छा है, तंद्रिता, अतंद्रिता यानी सावधानी से। तो भगवान कहते यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने नियत कर्मों को पूरा नहीं करूंगा तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करेंगे। हद है, भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं अपने नियत कर्मों को सावधानी से पूरा नहीं करूंगा तो कोई पूछ सकता है कि भगवान तो इतने आदर्श कार्य नहीं करते, जब संसार में आते हैं तो इतने आदर्श कार्य नहीं करते हैं, चोरी करते हैं, रासलीला करते, लड़कियों के साथ वस्त्र हरण करते हैं, तो यहाँ पर कैसे भगवान ने कहा कि मैं अगर सावधानी पूर्वक अपने कार्य नहीं करूंगा, नियत कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे लोग मेरा अनुसरण करेंगे। तो फिर भगवान ने किया क्या ऐसा जिसका अनुसरण करके दूसरे लोग का कल्याण होगा। तो यहाँ पर हमें बात को समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को एक राजऋषि के रूप में उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने जब सामाजिक रूप में जिम्मेदारी स्वीकार की तब वे बड़े आदर्श पूर्वक कार्य करते थे, अपने सारे कर्तव्यों का बहुत ही अच्छा कार्य अच्छे तरीके से उनको निभाते थे। जब भगवान द्वारिका में रहते थे तो नारद मुनि जब उनके उनके विषय में उनको देखने के लिए जाते थे तो भगवान सारे महलों में, सारे कर्तव्य जो उनको एक राज ऋषि के समान करने चाहिए, सुबह उठना, ध्यान करना और ब्राह्मणों का सत्कार करना, ब्राह्मणों को दान देना, हर आदर्श स्थापित किया, एकदम सही तरह तरीके से सारे कार्य किए। लेकिन भगवान अभी जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं एक राज ऋषि के रूप में। अब राज ऋषि के रूप में भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि हम नवर्त, अगर मैं नहीं करूंगा तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात्र सब, तो सारे लोग मेरा अनुगमन करेंगे और इस तरह से गलत करेंगे सब, इसलिए मैं कार्य करता हूँ। लेकिन अभी भगवान राज ऋषि के रूप में है, लेकिन भगवान ने जो हमारे मन में भगवान का वही चित्र आता है, जब भगवान वृंदावन में थे तब छोटे बालक थे, ब्रज किशोर थे और बहुत ही छोटे थे और प्रेम से ये सब लीलाएं कर रहे थे, तभी वो समाज के राजा नहीं थे। जब वो नेता बने, भगवान समाज के नेता बने, तब वो अपने नियत कर्म बहुत अच्छी तरीके से करते थे, सारे काम एकदम सही तरीके से करते थे और अपनी प्रजा का ध्यान करना और बाकी सारे कार्य करते थे। वृंदावन में भगवान छोटे बालक ब्रज किशोर थे और वो ये सारे कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पर भी कोई लोग पूछ सकते हैं कि भले भगवान उस समय छोटे थे लेकिन भगवान थे ना, तो भगवान अगर कह रहे हैं कि आदर्श स्थापित करूंगा तो वही लोग दूसरे भी उसको अनुगमन करेंगे, तो भगवान छोटे थे तो भी उनको आदर्श स्थापित करना चाहिए जैसे श्री राम। लेकिन भगवान जब स्वयं इस संसार में आते, इस बात का उत्तर बहुत सुंदर है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नहीं आते, उसके लिए तो भगवान अपने अंश को भेज देते हैं, श्री राम को भेज दिया आदर्श स्थापित करने के लिए। और मतलब आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान को स्वयं इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन इस संसार में आते हैं तो आध्यात्मिक जगत को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, क्योंकि जीव आध्यात्मिक जगत के विषय में कुछ नहीं जानता, तो भगवान ये चाहते हैं कि जीव जो इस संसार में आनंद प्राप्ति करने के लिए भटक रहा है तो उसे आध्यात्मिक जगत का कुछ मजा दिखाऊं, ताकि वो उधर आने के लिए प्रयास करे। जैसे ये कैसे है, देखो पुरुष और स्त्री का संबंध जितने भी धर्म है उनमें निषेध किया गया कि ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, बंधन का कारण बनेगा या अपराध लगेगा या। लेकिन ये पुरुष और स्त्री का आकर्षण आखिर है क्यों, उसका उद्गम स्थान क्या है? बल्कि ये क्रिश्चियन लोग या फिर मुस्लिम लोग ऐसे कहते हैं कि शैतान ऐसा करवाता है, हमारे हृदय में शैतान है जो पुरुष और स्त्री, अगर पुरुष होता है तो उसका दिल करता है कि स्त्री के साथ संबंध स्थापित करूं और स्त्री को। लेकिन अगर शैतान करता है तो ऐसा करता क्यों है? मतलब भगवान जब कहते हैं कि सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, तो इस जो स्त्री पुरुष के मिलाप का जो सुख है उसका कारण भी कौन है? भगवान ही है। तो ये आनंद आखिर आया कहां से, ये आनंद उसकी आखिर रियलिटी क्या है? तो जो रासलीला भगवान इस संसार में करते हैं, भले रासलीला में जो भगवान है और जो गोपीजन है वो भौतिक स्तर पर नहीं है, लेकिन उनका जो आपस में आकर्षण है उसके विषय, अभी देखो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण पंद्रवा अध्याय जो जब हम अध्याय नंबर 15 पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जो ये भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, क्योंकि जो कुछ आध्यात्मिक जगत में है वो सब इस भौतिक जगत में उल्टा दिखता है। अब क्योंकि आध्यात्मिक जगत में यह प्रेम, माधुर्य प्रेम है, उसी का इस संसार में विकृत रूप में है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या है, पुरुष केवल कृष्ण है और बाकी सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, इस संसार में क्या है उसका विकृत रूप है। लेकिन ये जो भगवान लीला करते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं कि आप इसका अनुकरण करो, यानी कि उसकी नकल करने के लिए भगवान नहीं कहते, यानी कि जो ये नैतिकवादी हैं उनको परेशान करने के लिए या विचलित करने के लिए भगवान नहीं करते, भगवान बल्कि इसलिए करते हैं कि आप देखो कि इतना आनंद है मेरे धाम में, और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए इसको नकल नहीं करो, बल्कि इसी रासलीला में सम्मिलित होने के लिए, सहभागी होने के लिए कार्य करो। कोई ऐसा कार्य करो मुझ तक पहुंचने के लिए, ताकि आप भी मेरे साथ इस आनंद का आनंद भोग कर सको। इतना आनंद है मेरे पास, ये आनंद केवल मैं ही तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। हे जीव, हे आत्मा, तुम इस संसार में ढूंढ रही हो प्रेमी को, इस संसार में सुहृदम सर्वभूतेषु, केवल मैं ही तुम्हारा प्रेमी हूँ, केवल मैं ही तुम्हें प्रेम प्रदान कर सकता हूँ। तो ये रासलीला भगवान ने इसलिए नहीं की, लेकिन यहाँ पर लोग की बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि वो समझते हैं नहीं ऐसा करना, भगवान ने कैसा कहा है, भगवान ने ऐसा किया है, वो हम कर भी नहीं सकते, भगवान के तरह के कार्य कर नहीं सकते। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए हम वैदिक साहित्य से, शास्त्रों से, श्रीमद् भगवद गीता से, गुरु महाराज से आदेशों का पालन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान जो आनंद संपूर्ण प्रकृति को देते, जो अपने निजजनों को देते हैं, वही आनंद वो हमें प्रदान करेंगे। तो यही आनंद को एक्सप्रेस करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। तो ये हो गई रासलीला और भगवान का इससे स्पर्श संबंध के कारण। और वो मक्खन चोरी क्यों करते हैं, ये बहुत ही अच्छा, भगवान मक्खन क्यों चोरी करते हैं? तो 17वीं-18वीं शताब्दी में जब यूरोपियन लोग इस वृंदावन में आए थे, तो यूरोपियन लोग को कुछ खबर नहीं थी भगवान के विषय में, कुछ पता ही नहीं था कि भगवान क्या होते। वास्तव आज तो हमारा संसार इतना विकृत हो गया है कि भारतीय को भी पता नहीं है कि भगवान कौन है। एक कोई इस्कॉन डिवोटी गए थे, वो भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में बता रहे थे। कृष्ण, तो कृष्ण का एक फोटो लगा हुआ था, ब्लैक कलर का लगा हुआ था कृष्ण का। तो उसको देख के बोला, इसको जानते हो? तो एक वजह ने बोला, हाँ मैं इसको जानता हूँ। बोला, कौन है? बोला, वैसे तो ये हमेशा, अभी कृष्ण का खाली फेस था, खाली फेस का एक फोटो था, ब्लैक कलर का कृष्ण। बोले, ये वैसे तो हमेशा जीभ निकाल के खड़ी होती है, आज मुस्कुरा रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है। मतलब उसको ऐसा लगा कि काली माता है। मतलब आज हमारी भारतीय संस्कृति में भी बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि आदर्श नहीं है ना, माता पिता करते नहीं है भक्ति, तो बच्चों को कैसे खबर पड़ेगी कि कृष्ण क्या है, राधा क्या है, और सब ये गोपियां सब क्या है। तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं करते, तो भगवान के विषय में अपने बच्चों को भी नहीं बताते, तो इस तरह से ज्ञान पता ही नहीं चलता कि वास्तविक हमारे शास्त्र क्या है। तो जब 17वीं-18वीं शताब्दी में यूरोपियन लोग जब आए वृंदावन में, तो सारे फोटोज देख रहे थे भगवान के। बोले, ये कौन है जो छोटा सा बच्चा है और बड़ी बड़ी आंखें हैं, मोर पंख लगाया, बांसुरी, ये बांसुरी भी लगी हुई है यहाँ पर, ये है क्या? माखन हाथ में उठाया हुआ है, ये कर क्या रहा है? तो वहां के भक्त लोगों ने बताया कि भाई ये भगवान है। बोले, ये भगवान है? तो उन इतना हैरान हो गए कि ये तो छोटा था भगवान। हमने समझा था कि भगवान बहुत बूढ़ा होगा, बहुत क्रुद्ध होगा, और इतना जब कोई हम अपराध करते हैं तो वो इतना जोर से थप्पड़ मारेगा, घूम घूम के इंसान घूम घूम के नरक में चला जाएगा। तो ये इतना छोटा भगवान है? तो बोला, हाँ यही भगवान है। तो बोला, अच्छा ठीक है, ये भगवान है, तो ये भगवान कर क्या रहा है? तो बोला, ये भगवान है ना, वो मक्खन चोरी कर रहा है। उड़ी, भगवान है वो चोरी कर रहा है, वो भी मक्खन? तो दिमाग का वो, तो उनके दिमाग का ना शॉर्ट सर्किट ऐसे हो गया कि समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा किसका भगवान है। देखो, सबसे पहले तो भगवान को चोरी करने की आवश्यकता क्या है, और जब वो चोरी भी कर रहे हैं तो मक्खन को क्यों चोरी कर रहे हैं? यानी कि भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अब उनको भी पता है भगवान को क्या जरूरत है, और वो भी किसी के घर पे जाके चोरी करने की। तो इसके उत्तर में बताते शास्त्र कि जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया था वृंदावन में, जब यशोदा माई को विश्वरूप दिखाया था, तो विश्वरूप में वृंदावन भी था, यशोदा माई का घर भी था, और यशोदा माई का घर था तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितना भी मक्खन था वो भी भगवान के शरीर में ही था। जब भगवान के अंदर ही सब कुछ है तो भगवान ये सब कार्य क्या कर रहे हैं, भगवान चोरी क्यों करते हैं, भगवान क्या करते हैं? तो अब सारा वृंदावन जब भगवान के अंदर है, तो वृंदावन की सारी गोपियों के सारे घर और सारे गोपियों के घर के अंदर सारा मक्खन, वो सब भगवान के अंदर। लेकिन भगवान ये सब लीला अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए करते हैं। भगवान केवल भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं संसार में, देखो कितनी आनंदमय लीला है। तो भगवान परम सत्य है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान कैसी लीला करते हैं। देखो संसार में क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, भगवान के सामने झूठ मत बोलो, भगवान है उनके सामने झूठ नहीं बोलो, या फिर अदालत में भी जाते बोलते गीता पे हाथ रखे कसम खाओ के झूठ नहीं बोलूंगा। ये तो भगवान के होने का यही कारण, मतलब ये सबूत है कि भगवान को जब हमने साक्षी माना है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन यशोदा माई की या भगवान के भक्तों की क्या स्थिति है, एक बारी क्या यशोदा माई अंदर गई, बाहर जब आई तो बाहर मक्खन रख के गई थी, जब आई तो नहीं था। तो यशोदा माई समझ गई, बोला कृष्णा ये मक्खन तुमने खाया? तो कृष्णा बोले नहीं मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। तो बोला यशोदा माई ने कहा झूठ मत बोलो, सच बताओ तुमने खाया? भगवान को कृष्ण को बोल रही है आवाज सत्यम वदहे मुरारे, बताओ बताओ सच बताओ किसने खाया। तो ये देखो भगवान अपने भक्तों को कितना स्नेह करते हैं कि भगवान अपनी स्थिति भूल जाते हैं, भक्तों के अधीन हो जाते हैं। और ये स्थिति है भगवान के भक्तों की। तो भगवान इस संसार में आते हैं, आदर्श स्थापित करते हैं कि समाज में किस तरह से जिया जाए और अंत में किस प्रकार से उस ब्रज प्रेम को प्राप्त किया जाए, आप कैसे संसार में जियो ताकि आप परम सिद्धि को प्राप्त करो। तो भगवान भले ही संसार में कभी कभी आदर्श कोई भी कार्य करते हैं, वो भले आदर्श नहीं भी होता है, लेकिन संसार की जो नियत ये जो अच्छाई है, जो संसार की नैतिकता है, वो कभी भगवान तक पहुंच नहीं सकती। जैसे हम अपनी अच्छाई से भगवान की अच्छाई को नहीं माप सकते, जैसे सूर्य और लालटेन। अब आप लालटेन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो रात के अंधेरे में कभी भी सूर्य को ढूंढ नहीं सकता। ढूंढ सकता है संसार में पूरा लालटेन लेकर घूमो के भाई सूर्य कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो क्या लालटेन सूर्य को ढूंढेगा? नहीं, सूर्य अपनी मर्जी से प्रकाशित होता है और अपनी मर्जी से जाता है। लेकिन हमारा ये औकात ही नहीं है कि हम अंधेरे में सूर्य को ढूंढे। उसी तरह यह संसार में, इस संसार में माया है। और भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं 7.25 में, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबको समझ में नहीं आता है। भगवान आते ही नहीं है किसी को समझ में। और भगवान श्री कृष्ण बताते केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति। तो भगवान जो करते, भगवान परम सत्य हैं, भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसमें स्वार्थ नहीं होता है। भले ही कभी हमें दिखता है कि वो कोई अनैतिक कार्य करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें जरूर हम सबका उद्धार होता है, हम सबके लिए प्रेरणा होती है, हम सबके लिए एक उत्साह होता है कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे तो हम भगवान के साथ इसी तरह का संबंध निर्माण कर सकेंगे। तो भगवान के आने का कारण है। इन श्लोकों में एक और भी मजे की बात है कि भगवान अपना स्तर बता रहे हैं, स्तर को भगवान सूचित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पार्थ तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो अर्जुन को ये लगा नहीं, मतलब सोचा नहीं उसने कि तुमने जब मुझे पार्थ बोला तो हम दोनों संबंधी हैं, जब मेरा कर्तव्य है तो तुम्हारा भी कर्तव्य होगा ना। पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बताया 2.61 में कि मत परा मेरे में मन लगाओ। लेकिन अर्जुन ये बात को नोट नहीं कर रहा है। अर्जुन अभी क्यों नहीं नोट कर रहा है, वो इसलिए कि अर्जुन अभी बहुत उसका मन इतना विचलित है। तो इतनी सारी बातें भगवान बता रहे हैं तो हम भी देखते हैं ना, यदि हमें कोई समस्या होती है, कोई हमारा मन विचलित होता है तो हम किसी सीनियर डिवोटी से बोल देंगे भाई मेरा मार्गदर्शन कीजो, तो वो बहुत सारे सिद्धांत बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हमको वही बात क्लिक होती है जो बात का संबंध हमसे होता है ना। जिस बात जो बात हम सोच रहे होते हैं उसी के विषय उसको तुरंत सुनते हैं, उसी तरह से उसी को फौरन से क्लिक करते हैं। ये हमारे मन की ऐसी वृत्ति है कि जो हमें हमारे से संबंधित लगता है हमारा मन हमारा ध्यान उसी की ओर जाता है। तो अभी क्योंकि अर्जुन के मन में क्या चल रहा था कि युद्ध करना है नहीं करना है, युद्ध करना है नहीं करना, तो भगवान भले कुछ भी बता रहे हैं तो उधर उसका ध्यान नहीं लग रहा है कि किस पर ध्यान लगाना है, वो भगवान की क्यों नहीं कर्तव्य इधर नहीं लग रहा है उसका ध्यान, वो कब लगेगा, जब पहली जब चौथे श्लोक में चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे ना कि सूर्य देव को मैंने ज्ञान दिया, फिर बोलेंगे अरे आप तो अभी आए हो, आपने कैसे दिया, फिर वो जब एक बार वो टॉपिक शुरू होगा फिर तो भगवान के विषय में बोलेंगे, लेकिन अभी उसके मन में खाली एक ही बात है कि मैं किसी तरह से युद्ध करने से बच जाऊं, युद्ध के विषय में जो बता रहे हैं भगवान। तो ऐसे अंग्रेजी में कहावत है कि आप जो बोलते हो लोग उसका 20% ही सुनते हैं, तो भगवान जानते हैं कि कौन सा 20% सुनेगा। तो भगवान की इच्छा है कि वो भक्ति के विषय में बताए, भगवान की इच्छा है कि वो अपने दिव्य रूप दिव्य स्वरूप के विषय में बताए, भगवान की इच्छा है कि जो भी जीव मेरे विषय में यदि सुनता है तो उसे फौरन से पता होना चाहिए कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आकर ही तुम्हें तुम्हारी सिद्धि संभव है। लेकिन वो जीव वही सुनता है जो वो चाहता है। तो अभी भगवान ने बता दिया कि अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अर्जुन को इस बात में कोई भी रुचि नहीं। अर्जुन क्या जानना चाहता है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तो इन दो श्लोकों में भगवान ने बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा तो संपूर्ण जगत मेरा अनुसरण करेगा। हमने इसको समझने का पूरा प्रयास किया, समझाने के लिए मैंने प्रयास किया, और आशा है आपको समझ में बहुत कुछ आई होंगी इसमें बातें। अब इसका तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी हो गई है, फिर आप लोग सोचते हो कि इतना बड़ा बड़ा लेक्चर होता है, टाइम नहीं होता। तो इसका तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया याद रखिएगा कि कल वापस से सुनना है, साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।